पद्मनंदी पंजन। सभी भक्तों को जानना है, आप ऋषभदेव जूम चैनल पर जो लोग भी उपस्थित हैं सबको जानना है कि परसों के दिन ज्ञानांजलि ऐप पर कल्याण कल्प तरु ज्ञान पहेली 14 नंबर की पहेली उसमें डिस्प्ले हो गई है, जिसे 25 दिसंबर की रात्रि 8 बजे तक आप लोग ज्वाइन करके और उसके उत्तर भेज सकते हैं, उसी में आ जाएंगे। ये आज का कंप्यूटर का साधन है कि जो एप्लीकेशन बना करके आपको दिया गया है, और इसमें 10 प्रश्न हैं, 10ों प्रश्न के चार चार उत्तर हैं, एक कोई उत्तर ही उसमें सही है, उसमें आपको टिक मार्क करना है। जिन लोगों के 100 में 100 नंबर आएंगे हम लकी ड्रॉ के माध्यम से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 3 प्राइज निकाल करके और उनको हम सम्मानित करेंगे। तो इसमें जो प्रश्न है केवल कल्याण कल्पतरु स्तोत्र की पुस्तक से ही प्रश्न किए गए हैं। भगवान अनंतनाथ की स्तुति, भगवान धर्मनाथ की स्तुति और भगवान शांति कुंतु अरे नाथ की स्तुति तक इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हल कीजिएगा। अभी तक जिन लोगों ने अपने मोबाइल में अपने आईपैड में इस ज्ञानांजलि ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो तो कर लेना। आप जो लोग यहाँ आए हो ना, सब लोग भी ध्यान से सुन लो कि गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से इसको अपने अपने फोन पर डाउनलोड कर ले, और उसको खोलते ही आपको पहेली दिखाई देगी। हमने पिछले दिनों से 13 पहेलियां डिस्प्ले की और बहुत सारे लोगों ने उसमें 700 800 लोग ऐसे भाग लेते थे, और उसमें से हम 15 प्राइज निकालते थे। इस अभी 14 नंबर की पहेली डिस्प्ले हुई है, तो आप लोग उसमें भाग ले करके, और इस एप्लीकेशन में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा, तो ज्ञानांजलि ऐप को डाउनलोड कीजिए। अब मैं चलती हूँ पद्मनंदी पंच विंशति का की ओर। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी की यह अमूल्य कृति है पद्मनंदी पंचविंशति का, और इसमें 25 अध्याय हैं इसलिए पंचविंशति का कहा गया। एक अध्याय तो पूरा हुआ धर्मोपदेशामृत नाम का अधिकार, और दूसरा अधिकार हमने कल से प्रारंभ किया मुनि धर्म का कथन। इस मुनि धर्म के कथन में सब कुछ बता दिया कि जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और 12 प्रकार के तप, 12 प्रकार का संयम, 10 प्रकार का धर्म, 5 आचार आदि समस्त उत्तर गुणों का भी पालन करते हैं, ऐसा मुनि धर्म अक्षय पद को प्राप्त कराने वाला होता है। अब उसने कहा कि जब मुनिगण अपने मूल गुणों का पालन करने में निष्णात हो जाते हैं तो अपनी चैतन्य स्वरूपी आत्मा के अंदर भी तन्मय तल्लीन होते हैं। इसलिए कहा है कि सज्जन पुरुषों को उन मुनियों की शरण में जाकर पर पदार्थों के प्रति संसार से अपने मोह को थोड़ा थोड़ा छोड़ करके और निर्मोही बनने का प्रयत्न किया करना चाहिए। अब आगे 40 नंबर के श्लोक पर हम आते हैं। मुक्त्वा मूल गुणान्यतिर्विदधता शेषेषु यातनं परं दण्डो मूल हरो भवत्यविरतं पूजादिकं वाञ्छता एकं प्राप्त मरे प्रहारमतुलं हित्वा शिराश्छेदकम् रक्षत्यंगुलिकोटिखंडनिकरं कौन्यो नरो बुद्धिमान। इसका हिंदी अनुवाद भी है। जो यति पूजा की इच्छा से नई मूल गुणों को पाल रहे उनको आचार्य मूल छेदक दे करके दंड बताते हैं। जैसे अंगुली का अग्रभाग सिर छेदक बाण न रोक सके, वैसे ही मुनि के उत्तर गुण नहीं मूल गुणों के दोष ढके। यानी कैसे जो उत्तर गुणों का पालन करते हैं मूल गुणों की ओर ध्यान नहीं देते उनके दोषों को कहते हैं। यानी मूल माने होता है जड़। पहले अपनी जड़ को मजबूत करना चाहिए, माने पहले मूल गुणों का पालन करें, फिर उत्तर गुण में अगर शक्ति है तो जाएं, वरना उत्तर गुण जो बहुत शक्तिमान योग्य संत होते हैं उन्हीं के द्वारा पालन किए जाते हैं। आज तो हमें कोशिश करना है कि कम से कम हमारा मूल गुण तो पल जाए, मूल गुण में तो दोष ना लगने पाए। इसके लिए कहते हैं कि युद्ध करते समय अनेक प्रकार के प्रहार होते हैं, उनमें कई एक तो सिर के छेदने वाले होते हैं तथा कई एक अंगुली के अग्रभाग के छेदने वाले होते हैं। तरह तरह से शत्रु के प्रति प्रहार किया जाता है, कभी कोई उंगली को छेद देते हैं कि ये धनुष बाण ना चला सके, कभी कोई सिर को छेद देते हैं। यानी वहां लक्ष्य केवल एक होता है कि हमें शत्रु को वश में करना है, शत्रु को मारना है और खुद विजय प्राप्त करना है। उनमें यदि कोई पुरुष सिर के छेदने वाले प्रहार को छोड़कर अंगुली के अग्रभाग को छेद करने वाले प्रहार से रक्षा करे तो उसका जिस प्रकार उससे रक्षा करना व्यर्थ है, उसी प्रकार जो यदि मूल गुणों को छोड़कर शेष उत्तर गुणों के पालन करने के लिए प्रयत्न करते हैं तथा निरंतर पूजा आदि को चाहते हैं, उनको आचार्य मूल छेदक दंड देते हैं। मूल छेदक दंड माने मूल छेद प्रायश्चित देते हैं, यानी पूरी दीक्षा उनकी छेद देते हैं। इसलिए मुनियों को प्रथम मूल गुण पालना चाहिए, पीछे उत्तर गुणों का पालन करना चाहिए। अब सोचो अगर सिर ही किसी ने काट दिया तो उंगली क्या करेगी? इसलिए पहले सिर को काटने की रक्षा करने के समान अपने मूल गुणों का पालन करके अपने मस्तिष्क को, अपने मन को, अपने शरीर को थोड़ा कंट्रोल में अनुशासित करके जो गुरु ने हमें व्रत दिए हैं उनका पालन करके, और यदि शक्ति है तो उत्तर गुणों का पालन करें, अन्यथा कम से कम मूल गुणों में रहें, मूल गुणों का पालन करें। इसलिए आचार्य देव ने यहाँ पर उदाहरण भी दे दिया है प्रहार का, क्योंकि शत्रु का प्रहार ये कर्म रूपी शत्रुओं के लिए कहा गया। कर्म रूपी शत्रु हमारे पीछे लगे हुए हैं और उन्हीं शत्रुओं पर प्रहार करके या उन शत्रुओं का प्रहार सहन करके उनको जीतना और उनको पराजित कर देना, यही अपना मूल लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए कहीं कहीं कहा भी है ना कि जो जो जीते युद्ध में शत्रु उसे रणवीर कहते हैं, जितावे युद्ध में शत्रु उसे शमशीर कहते हैं, तलवार बचावे लाज सतियों की उसे रघुवीर कहते हैं, जो कुंडलपुर में जन्मा है उसे महावीर कहते हैं, जो कुंडलपुर में जन्मा है उसे महावीर कहते हैं, जो कर्म शत्रु को जीते उसे महावीर कहते हैं। महावीर जो महान वीर रहे और उन्होंने समस्त कर्म शत्रुओं को जीता, हम उनकी संतान हैं, यानी हम उनके शासन में रह रहे हैं। इसलिए अपना कर्तव्य यह है, महावीर के समान बहुत बड़ी तपस्या ना कर सकें, महान व्रतों का पालन ना कर सकें, तो कम से कम जो मूल गुण हमें प्राप्त हुए हैं उनको निरतिचार पालन करने का अभ्यास करने के लिए ही इस 40 नंबर के श्लोक के अंदर मुनि धर्म के कथन में आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी ने कहा है। ये किसी की व्यक्तिगत कहानी नहीं होती है, यह हर संत के लिए आचार्यों के उपदेश हैं, क्योंकि हम इन आचार्यों के संतान के समान हैं, हम बालक के समान हैं इनके लिए। तो बार बार उदाहरण दे करके बताते हैं कि भव्यात्मन अपने मूल गुणों की रक्षा करो, राग द्वेष में मत पड़ो, संसार के अंदर रह करके ही संसार को परित्याग किया जाता है। इस प्रकार से आज का ये स्वाध्याय संपन्न होता है जवानी के।